ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसने किसने सुबह जगन्नाथ के दर्शन किए? आज सुबह सभी ने किए। तो जैसे आप जानते हैं जगन्नाथ देव, ये जो धाम है ये बहुत महत्वपूर्ण धाम है। चारों धामों में चार धाम कौन कौन से हैं? रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ। तो ये जो भारत वर्ष है उसके चार दिशाओं में चार धाम है। पूर्व की ओर जगन्नाथपुरी है, पश्चिम की ओर कौन सा है? द्वारका है। दक्षिण की ओर रामेश्वरम है और उत्तर नॉर्थ की ओर बद्रीनाथ है। तो भगवान अलग अलग धामों में अलग अलग विशेष कार्य करते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि उस विशेष धाम में जब आप जाते हो तो उस विशेष कार्य को बहुत गंभीरता से करना चाहिए। तो आपको भगवत जो कृपा है बहुत सरलता से प्राप्त हो सकती है या भगवान आपके ऊपर सरलता से प्रसन्न हो सकते हैं। जैसे वृंदावन है तो वृंदावन में कृष्ण की कृपा को अनुकूल करना है, कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करना है तो वृंदावन में जाकर अपनी सारी जो उपाधियां हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी उपाधियां मीन्स डेजिग्नेशन, पद, पोजिशन, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत मेरे अंदर ये स्किल्स हैं या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो बहुत सारे जो हमारे अंदर उपाधियां हैं, या मैं मिनिस्टर हूँ या मैं नेता हूँ या मैं बॉस हूँ, तो ये सारी, या मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ या मैं, जो भी उपाधियां हैं जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, आत्मा की तो एक ही उपाधि है। क्या है उपाधि आत्मा के लिए? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, कृष्ण का इटर्नल सर्वेंट। लेकिन जीवात्मा जब ये बॉडी में आता है तो कई सारे कवरिंग्स वो धारण करते रहता है। बच्चा होता है तो कहता है मैं बच्चा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कहता है मैं जवान हूँ। तो एक के ऊपर एक सारे कवरिंग्स बढ़ते जाते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई है और बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम इस शरीर के आत्मा के ऊपर और लेयर्स, पहले से कितने लेयर से ये ढका हुआ है? पांच पंच महाभूतों से, फिर मन, बुद्धि, अहंकार और उसके ऊपर भी ये सारी उपाधियां डेजिग्नेशन। तो भगवान चाहते हैं जब आप धाम में जाते हो तो इन सारी उपाधियों को कहां छोड़ के आ जाओ? घर में। जब आप यात्रा के लिए निकलते हो तो इन सारी उपाधियों को घर में छोड़कर हमें धाम की यात्रा करनी चाहिए, भगवान की ओर जाना चाहिए। तो वृंदावन में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो वृंदावन में भगवान को आकर्षित करने के लिए, जैसे प्रभुपाद ने कहा, धाम में आप या वृंदावन आप पैसे खर्च करके टिकट निकाल के एंट्री नहीं कर सकते या प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए एक ही चीज है कि इन सारे उपाधियों को दूर रखो और बिल्कुल ये भावना का उदय करो अपने हृदय में। हाँ, क्या है? गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपियों के जो पालक है, भर्ता है, कृष्ण है, उनके सेवकों के सेवकों का सेवक बनना। जैसे अक्रूर भी गए थे वृंदावन यात्रा में, गए थे कि नहीं? किसने भेजा था उनको? हाँ, कंस ने। बल्कि कंस भगवान के कितने विरोधी थे, शत्रु थे एक प्रकार से, लेकिन फिर भी अक्रूर कहते कि ये कंस ने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे यात्रा में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? हाँ, जैसे घर में भी जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो घर के जो युवा सदस्य होते हैं ना, बहू है या फिर पुत्र आदि है, ये सब लोग परेशान हो जाते हैं बूढ़े लोगों से, बार बार खांसते रहता है, टेंशन देते रहता है, परेशान करते हैं। बूढ़े व्यक्ति किसको अच्छे लगते हैं? तो इनसे छुट्टी प्राप्त करने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं आजकल, कहते हैं कि इनको कहाँ भेज दो? तीर्थ यात्रा, जाने दो, घर की जो टेंशन है वो चली जाएगी। तो कंस ने भी इनको भेजा था, कोई उचित कार्य के लिए नहीं भेजा था, कृष्ण को लाकर कृष्ण को मारने का योजना उन्होंने बनाई थी। लेकिन जब अक्रूर गए अपने रथ के ऊपर तो तो जब वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया तो वृंदावन की भूमि का स्पर्श करने मात्र से जब वो जा रहे थे तो देखा कि ब्रज की भूमि सारे भगवत चरण कमलों से अंकित है। जहां जहां उन्होंने दृष्टि डाली वहां कृष्ण के चरण कमल नजर आ रहे थे मिट्टी के ऊपर, और उसमें कई सारे जो चरणों के चिन्ह है और चरण चिन्ह चरणों में जो मार्क्स होते हैं भगवान के, अंकुश पताका यज्ञ जव आदि, ये सारे दिखाई देने लगे। तो ये सब उतर गए, अक्रूर अपने गाड़ी से अपने रथ से नीचे उतरे और उन चरणों को देखकर प्रणाम करने लगे। वहां की जो धूली है उसमें लोटपोट होने लगे, अपने शरीर को वहां की धूली से पूरी तरह से स्नान करवाया एक प्रकार से। तो वृंदावन में कृष्ण प्रीति या कृष्ण को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को ब्रज रज में क्या होना चाहिए, लोटपट होना चाहिए। अभी हम यहाँ प्रणाम करते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि मेरे कपड़े अभी तो दिल्ली से प्रेस करके लाया था और इतने धुले हुए हैं, गंदे ना हो जाए, बल्कि शुद्ध हो जाएंगे। दिल्ली में जो भी कपड़े धोते क्या है वो सारी गंदगी से भरे रहते हैं, लेकिन जब धाम में आते हो धाम का ये जो मिट्टी आदि है यहाँ, इसकी कामना देवी देवता देवतागण करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे नंद महाराज के आंगन में एक पत्थर बनाओ, और उद्धव इतने बड़े स्कॉलर कहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे, स्वर्ग में, हाँ पैराडाइज यूनिवर्सिटी में गए थे। वहां जाकर उन्होंने बृहस्पति देवताओं के जो गुरु है उनसे शिक्षा प्राप्त की, और वो जब वृंदावन में आए और वैसे बहुत स्कॉलर थे मथुरा में, उनके जैसा कोई विद्वान नहीं था। कृष्ण को कुछ चाहिए हो सलाह तो उद्धव को जगाते थे और कहते थे उद्धव बताओ मुझे ये समस्या है तुम बताओ। तो जब देखा कि उद्धव के अंदर ज्ञान है लेकिन भगवत प्रेम नहीं है, भगवत भक्ति एक प्रकार से नहीं है। तो भक्ति क्या है, भगवत प्रेम क्या है, भगवत सेवा की सर्वोच्च सीमा क्या है, वो दिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, उद्धव को कहाँ भेज दिया, वृंदावन में। जब उद्धव वृंदावन गए तो उन्होंने सीखा वहां कि कितना अधिक आसक्ति, कितनी अधिक सेवा की भावना वृंदावन वासियों के हृदय में है। तो वहां उद्धव ने जब गोपियों को आदियों को देखा, गोपी ग्वाल बाल आदि, तो उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे क्या, अहो वो कहते हैं अहो ब्रज नंद श्रिया, कहते कि ये नंद महाराज के इस गांव में रहने वाली स्त्रियां कितनी सौभाग्यशाली हैं, मैं तो इनके चरण कमलों में धूलि, इनके चरण कमलों की धूलि का कण बनना चाहता हूँ, या इनके चरण कमलों की जो धूली है वो मैं अपने सर में लेना चाहता हूँ। तो इतने बड़े स्कॉलर उद्धव वृंदावन में एक घास या लता पता के रूप में निवास करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो धाम में ये जो मिट्टी आदि है वो क्या है, बहुत भगवान और उनके जो भक्तों के चरण कमल है उससे एक प्रकार से आभूषित है। जब इसका स्पर्श होता है तो हमारे हृदय में जो काम आदि है वो सारी चीजें निकलने लगती है। तो जब धाम में आते हैं तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए प्रणाम आदि करने के लिए, नहीं दर्शन आदि करने के लिए, या जहां तहां बैठने के लिए, ये नहीं कि कहां मैं ढूंढू बेस्ट प्लेस कहां है जहां मेरे कपड़े और सब कुछ सेफ रहे। भौतिक जगत में जितना मर्जी सेफ रहने का प्रयास करो आप सेफ नहीं रह सकते। तो जब धाम में आते हैं तो इन सारी उपाधियों को त्यागो, इन सारी कवरिंग को छोड़ो और अपने हृदय को बिल्कुल सरल बनाकर क्या करो, भगवान को अप्रोच करो। क्योंकि हृदय में जब कपटता की भावना होती है और अहंकार या घमंड गर्व आदि की भावना होती है तो हम भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। भगवान के नजदीक होते हुए भी हम कई किलोमीटर भगवान से दूर रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है पतित पावन, चैतन्य महाप्रभु को ये नहीं कहा जाता कि कपट पावन कहा जाता है, नहीं। तो ऐसा ये जो धाम, जहाँ अलग अलग धामों की अलग अलग विशेषता है, तो ब्रज में ब्रज रज की महिमा है, ब्रज रज में लोटपोट हो जाओ तो आप भगवत प्रेम अनुकूल कर सकते हो। और जब आप बद्रीनाथ जाते हो तो वहां तपस्या चाहिए, वहां क्या चाहिए, तपस्या। बद्रीनाथ गए और वहां तपस्या नहीं की तो फिर भगवान की कृपा अनुकूल नहीं होगी। और वैसे ही द्वारका आप जाते हो तो द्वारकाधीश राजा है वहां, कौन से मूड में है, वहां किंगली ऐश्वर्य भावना में है। तो द्वारकाधीश को कुछ ना कुछ चाहिए, उनको बड़ी बड़ी चीजें ऑफर करनी होगी आपको, उनको हीरे जवाहरात माणिक्य कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देनी होती है द्वारका में जब आप जाते हो। हाँ रामेश्वरम में जाते हो तो मतलब इन सारे स्थानों में भगवान वैसे अलग अलग कार्य करते हैं। हाँ तो भगवान उठते हैं, कहाँ उठते हैं, बद्रीनाथ में, और फिर अपना ड्रेसिंग आदि करने के लिए, स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं, रामेश्वरम, और जब ड्रेसिंग करनी होती है तो कहाँ पहुँचते हैं, द्वारका, और जब उनको भोग स्वीकार करना होता है तो जगन्नाथपुरी। तो वहाँ तपस्या की आवश्यकता है, और यहाँ द्वारका में आपको कुछ ना कुछ उनको ऑफर करना होता है। उसी भांति आप जब रामेश्वरम जाते हैं तो वहाँ आपको मैक्सिमम क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। रामेश्वरम आप गए हो तो आप देखेंगे 22 कुएं हैं मंदिर के अंदर, तो आप बस एक बाल्टी एक व्यक्ति को आपके साथ आता है, वो आपके सर में बस पानी डालते रहेगा 22 कुओं का। हाँ, तो वहाँ स्नान की महिमा है। रामेश्वरम गए और स्नान नहीं किया आपने कई सा बार, तो आप कृपा अर्जित नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से आप जगन्नाथपुरी आए और यहाँ आकर क्या नहीं किया, प्रसाद नहीं पाया। महाप्रभु चैतन्य अपने भक्तों को कहा करते थे कि आकंठ भरी, कहाँ तक प्रसाद पाओ, कंठ भर तक, यहाँ तक फुल हो जाना चाहिए। प्रसाद के अलावा इधर उधर की कोई जो चीजें है वो अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं बचनी चाहिए, इतना जगन्नाथ का प्रसाद। आप आज तो एकादशी है, वैसे आज तो इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। मैं खुद ही सुबह एकादशी भूल गया। मैं जगन्नाथ टेम्पल गया तो मुझे वो आनंद बाजार देखा, तो मैंने सोचा अरे सुबह सुबह का समय जाते कुछ प्रसाद लेते हैं। मैं जो सोच रहा था महाप्रभु के चरणों के पास, तो याद आया कि आज एकादशी है। तो यहाँ आकर हमें आकंठ भरकर प्रसाद पाते रहना चाहिए, जिसके द्वारा जगन्नाथ की कृपा को या जगन्नाथ को आप अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हो। हाँ, तो ये प्रसाद का स्थान है। हाँ, और भी इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, वो हम बाद में कभी समय के अनुसार डिस्कस करेंगे। जगन्नाथ मंदिर से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग धामों में अलग अलग विशेषता है। वैसे नवदीप है, नवदीप मायापुर आप जाते हो तो वहां जाकर आपने एक चीज नहीं की तो आपको महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी, और वो क्या है, लाउडली
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो नवदीप ये नाम क्षेत्र है, और यहाँ ये अन्न क्षेत्र है, या वो नाद ब्रह्म कहा जाता है नवदीप को, जहाँ नाद मतलब कीर्तन होता है, कीर्तन की प्रमुखता है। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ स्वयं यहाँ निवास करते हैं दारू ब्रह्म के रूप में। दारू ब्रह्म का मतलब है उड़न फॉर्म में। हाँ, भगवान यहाँ अवतरित होते हैं अपने जो बहन सुभद्रा के साथ और भाई बलराम के साथ यहाँ निवास करते हैं। और भगवान सदैव पूरे दिन क्या करते हैं, भोजन करते रहते हैं, खाते रहते हैं। हाँ, तो ऐसे भगवान जगन्नाथ सारे जीवों को यहाँ अपने स्थान में खड़े होकर या बैठकर सारे जीवों को दर्शन के द्वारा लाभान्वित करते हैं। तो हम जगन्नाथ टेम्पल में गए नहीं, लेकिन जब एक साथ जाएंगे तो कुछ प्लेसेस विजिट करेंगे, अंदर आपने किए भी होंगे, और उन हर एक, क्योंकि टेम्पल के अंदर ही इतनी प्लेसेस हैं और इतनी कृष्ण कथा है कि आपको 2-3 दिन कहाँ चाहिए, टेम्पल के अंदर। वहाँ का गरुड़ स्तंभ ही इतना पावरफुल है कि वहाँ से संबंधित कृष्ण कितनी कृष्ण कथाएं हैं। वहाँ की हर चीज आपको जगन्नाथ के नजदीक ले जाती है, जगन्नाथ टेम्पल की। जब आप एंट्री करते हो, एंट्री से लेकर बाहर आने तक जगन्नाथ टेम्पल क्या है, पूरा भरा हुआ है कृष्ण कथा से, कृष्ण रहस्य से। हाँ, तो आपने जब जगन्नाथ टेम्पल में प्रवेश किया होगा तो वहाँ साइड में कौन से विग्रह है, जगन्नाथ सिंगल देखे, बिल्कुल सिंह द्वार में। हाँ, साइड में अलोन अलोन जगन्नाथ का फेस है ओनली, किसने देखा है, हाथ ऊपर कीजिए। तो वैसे बाहर से भी दिखते हैं, रोड से भी दिखते हैं, आप जगन्नाथ सिंह द्वार के आगे से चलोगे तो वहां से भी आपको दिखाई देंगे। तो वो उनको कहा जाता है पतित पावन, या फिर शास्त्र में, क्योंकि जब जगन्नाथ जी सुभद्रा और बलराम के अलावा अकेले होते हैं तो उनको दधि बामन कहा जाता है। दधि मतलब दही खाना जिनको बहुत प्रिय है, बामन मतलब छोटा सा बच्चा बालक। तो ये कहां के कृष्ण है जो दही खाते हैं, वृंदावन के कृष्ण। तो इनको अकेले होते कृष्ण जगन्नाथ तो बहुत ज्यादा मोर मर्सीफुल होते हैं, जब अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ होते उससे अधिक दयालु, उससे अधिक करुणामय जगन्नाथ हो जाते जब वो अकेले होते हैं। तो उनको दधि बामन ये नाम दिया जाता है, या फिर दूसरा नाम होता है उनका पतित पावन। क्या होता है, पतित पावन। तो ये जो विग्रह है ये बहुत विशेष रूप से यहाँ आ जाते भगवान वहाँ। ये यहाँ के राजा थे जगन्नाथपुरी के, रामचंद्र देव। तो जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया कटक, कटक उनका राजधानी था, तो उस समय वो जो मुस्लिम शासक था उसने कहा मेरी जो पुत्री है राजकुमारी उससे तुम विवाह नहीं करोगे तो मैं जगन्नाथ संस्कृति को क्या करूंगा, मिटा दूंगा, जगन्नाथ टेम्पल को उध्वस्त करूंगा आदि। बहुत सारी सेना को लेके वो आया था और यहाँ तो छोटा सा राजा था रामचंद्र देव। तो इन्होंने क्या किया, जगन्नाथ और सारे भक्तों की रक्षा करने के लिए इसने सोचा, क्योंकि कोई व्यक्ति उस समय मुस्लिम, अभी शादी करने मतलब एक प्रकार से वही है कि आप एक प्रकार से मुस्लिम हो गए हो, वहाँ उस समय तो जल भी पियोगे या मुस्लिम आपके ऊपर जल छिड़का देंगे तो आप मुस्लिम बन जाओगे। तो यहाँ तो शादी करनी है राजकुमारी से, राजकुमारी से मुस्लिम शासक के। तो रामचंद्र देव ने जो बहुत बहुत महान भक्त थे, जगन्नाथ के पहले भक्त कोई होते हैं तो वो कौन होते हैं, ये राजा होते हैं जिनको गजपति कहते हैं। जैसे कहते ना अमेरिकन फर्स्ट लेडी, अमेरिकन राष्ट्रपति की जो वाइफ है वो कौन है, फर्स्ट लेडी है। तो वैसे फर्स्ट डिवोटी कोई जगन्नाथ का है तो वो राजा है, फिर उनके बाद जितने भी डिवोटीज हैं उनके बाद आते हैं। तो ऐसे क्योंकि भगवान मूल रूप से राजा इंद्रद्युम्न के लिए प्रकट हो गए थे, तो ऐसे जब राजा रामचंद्र देव ने जो विवाह किया उस राजकुमारी से, तो सारे जो पंडाज हैं पुजारी आदि बहुत एक प्रकार से क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को बैन किया, टेम्पल में आप अलाउड नहीं हो, दर्शन नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, और मंदिर के बाहर से बस बाहर से आओ और चले जाओ, इतने स्ट्रिक्ट थे पुजारी या पंडाज। तो फिर राजा इतना दुखी था कि मुझे जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, उनकी सेवा करने का लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। तो राजा रामचंद्र देव मध्य रात्रि के समय अपने महल से आते थे और रात्रि में रोया करते थे जगन्नाथ के दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए। और जो सिंह द्वार का जो गेट है वहां रात्र भर वहां पूरी रात पड़े रहते थे और वो प्रार्थना करते थे कि हे जगन्नाथ प्लीज आप मेरे ऊपर कृपा करो, दर्शन दो, आपकी सेवा का मुझे अधिकार प्रदान करो। तो भगवान को तो रात को सुलाया जाता है ड्रेस आदि पहना कर, तो भगवान ये राजा रामचंद्र देव के लिए रात्रि में अपना जो रत्न सिंहासन है, भगवान जिस पर बैठते उसको रत्न वेदी कहते हैं, तो रत्न सिंहासन को छोड़कर अंदर से चलते हुए गेट पर आते थे, गेट में आकर खड़े हो जाते थे जगन्नाथ, आप सोचो। और जो भगवान आते थे खड़े हो जाते थे और राजा रामचंद्र देव उनका दर्शन करते थे, उनको प्रार्थनाएं करते थे, उनकी स्तुति करते थे। तो ऐसे हर रोज मध्य रात्रि में हुआ करता था। तो फिर पुजारी देखते थे रोज सुबह जब वो मंगल आरती के लिए जाते थे, तो पुजारी देखते थे अरे ये क्या हो गया कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर का जो भगवान का अल्टर है, अल्टर से लेकर गेट तक तुलसी गिरी हुई है, रात्रि में बहुत सारे फ्लावर्स गिरे हुए हैं, बहुत सारी चीजें गिरी हुई है, चंदन का जो लेप है वो भी गिरा हुआ है। तो ये लोग सोचते थे कि ये क्या है। तो फिर भगवान ने स्वयं ही कहा कि मैं वास्तव में मेरे जो प्रिय भक्त है रामचंद्र देव उनको दर्शन प्रदान करने के लिए जाता हूँ, हाँ तो क्या करो आप वहाँ मेरे विग्रह की स्थापना करो। तो भगवान दधि बामन या पतित पावन रूप में उनका जो फेस है बहुत सुंदर फेस है उनका वहाँ स्थापना करते भगवान क्या इच्छा की पूर्ति हेतु। तो फिर बाद में उनको प्रवेश वगैरह अलाउ करते हैं। तो इस प्रकार से जो डिवोटी वास्तव में भगवान जगन्नाथ दो चीजों से अपनी कृपा करते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं, एक है उनका दर्शन और दूसरा है उनका प्रसाद, ये दो चीजें। मैक्सिमम जगन्नाथपुरी में आते हो तो दो चीजें करते रहो, आप क्या करो अधिक से अधिक 10 बार जाके प्रसाद पाओ, और हरिसुंदरपुर तो आपको 3 बार ही प्रसाद देंगे, तो लेकिन आप प्रयास करो जाओ प्रसाद पाते रहो, और दूसरा क्या करो जाके दर्शन करते रहो 2, 10 बार, 20 बार, क्योंकि भगवान यहाँ सबसे लेट सोते हैं, इनका शयन आप मंगल आरती तो अटेंड कर सकते हो, लेकिन जैसे मंगल आरती तो 6 बजे होती है, भगवान 6 बजे उठते हैं, उससे पहले उठते हैं लेकिन 6 बजे दर्शन वगैरह होता है। तो लेकिन उनका शयन आरती का कोई नियम नहीं है, शयन आरती मध्य रात्रि में 2 बजे, 1 बजे, अभी कौन जगता है, हम कहेंगे कि हम मंगल आरती जाएंगे, लेकिन यहाँ आकर कभी कभी प्रयास भी करना चाहिए कि क्या करो, शयन आरती भी अटेंड करो, बहुत रेयरली। आप चाहे और जितना आप लेट नाइट जाओगे तो मंदिर पूरा खाली, चार पांच लोगों के अलावा कोई है नहीं वहाँ दर्शन के लिए, 10-11 बजे के बाद तो बिल्कुल ही खाली होता है। आप चाहे जब करते रहो, जगन्नाथ के सामने प्रार्थनाएं गाते रहो, पुजारी ड्रेसे चेंज करते रहते, भगवान कई बार ड्रेस बदलते हैं, और जब भगवान सोते हैं रात को तो एक विशेष वेश धारण करते हैं, उसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश, जिसमें भगवान वृंदावन का वेश धारण करते हैं, और वृंदावन में कृष्ण कोई आभूषण स्वीकार नहीं करते, भगवान केवल पुष्प तुलसी आदि से सजते हैं। तो संध्या के समय भगवान वो वेश धारण करते हैं और तब उनको नींद आती है, वृंदावन भावना, वृंदावन कॉन्शियसनेस में जगन्नाथ सोते हैं, वृंदावन के भक्तों का स्मरण करते हुए। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ की ये कृपा है, दो प्रकार से हमें अनुकूल होती है, एक उनका दर्शन है और दूसरा उनका प्रसाद है। जब तक हम पूरी धाम में हैं तब तक ये दो चीजें हम कर सकते हैं अधिक से अधिक। तो ये जो स्थान है जहाँ हम बैठे हैं, इस स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपको वो लिस्ट मिली होगी जिसमें लिखा है श्वेत गंगा। तो गंगा यहाँ सदैव विद्यमान है, ये जो श्वेत गंगा का ये जो कुंड है ये कभी खाली नहीं होता है, यह हमेशा इसी लेवल में भरा रहता है, और यहाँ गंगा भगवान की सेवा के लिए सदैव उपस्थित रहती है। किसकी सेवा के लिए? जगन्नाथ की सेवा के लिए, क्योंकि जगन्नाथ के चरणों से ही निकली है भगवान जो गंगा है वो किसके चरणों से निकली है? कृष्ण के चरणों से ही निकली है। तो वैसे देखा जाए, जैसे हम कहते हैं चरणामृत, तो चरणामृत का क्या है, ये पूरा रिवर ही है, भगवान के चरणों को धोके जो जल निकलता है उसको चरणामृत कहते हैं। तो गंगा वास्तव में क्या है? चरणामृत है। तो लेकिन गंगा से भी महान उनके भक्तों को कहा गया है, भगवान के भक्तों को। शास्त्र कहते हैं कि गंगा बिल्कुल नजदीक है भगवान के चरणों से निकली, और लेकिन वो दूर भाग रही है। किससे दूर भाग रही है? भगवान से। किससे दूर? लेकिन भक्त जहां जहां जन्म लेते हैं, कोई अमेरिका के किसी अफ्रीका के जंगल में जन्म लिया होगा, वो भी भगवान के चरणों में यहाँ आ जाता है। मतलब भक्त जहाँ कहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नजदीक आते भगवान के चरणों में। इसलिए भगवान के भक्त गंगा से भी अधिक क्या है? महान है, शास्त्र कहते हैं। तो ये जो श्वेत गंगा है, ये स्थान जहाँ गंगा सदैव उपस्थित रहती है, और वास्तव में यहाँ ये नाम इसलिए भी पड़ा श्वेत, एक राजा थे श्वेत, राजा श्वेत थे, तो वो जगन्नाथ की सेवा करते थे। जब वो सेवा करते थे तो कुछ ना कुछ खुद कुकिंग करते थे राजा, भगवान की सेवा के लिए नहीं कि उन्होंने बहुत सारे नौकर लगा दे, चलो 56 भोग हमारी ओर से, लेकिन कुकिंग कौन करेगा? नौकर चाकर करेंगे। वास्तव में भगवान की सेवा के लिए स्वयं इन्वॉल्व हो जाए, अपने इंद्रियों को लगाए। तो राजा श्वेत वो सब सेवाएं करते थे, और कभी कभी उनको लगा, उन्होंने एक बार देखा कि सारे देवी देवता आते हैं और बहुत सारे इतने हाई क्लास व्यंजन स्वर्ग से बनाकर लाते हैं जगन्नाथ को ऑफर करने के लिए। तो राजा जब बाहर निकल रहा था, उन्होंने देखा इतने सारे डेमिगॉड्स इतने सारे व्यंजनों को लेके आ रहे हैं, तो मैं तो यहाँ सिंपल सा खिचड़ी बनाता हूँ, भगवान क्या मेरा खाएगी खिचड़ी? तो बहुत थोड़ा सा उनको दुख हो रहा था। लेकिन एक दिन सेवा करके जब जगन्नाथ मंदिर से वो बाहर जा रहे थे राजा, तब उन्होंने देखा कि जो लक्ष्मी देवी है वो जगन्नाथ को सर्व कर रही है, और सर्व क्या कर रही है? जो राजा ने बनाया हुआ खिचड़ी, राजा ने बनाया हुआ जो व्यंजन है वो उनको सर्व कर रही है। तो राजा बहुत आनंदित हो गए, राजा कंटिन्यूअसली अपनी सेवा स्वीकार करने लगे, क्योंकि उनकी सेवा, इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी भगवान की हर छोटी छोटी सेवा करने के लिए तत्पर थे। भगवान जगन्नाथ ने कहा कि वास्तव में मैं आपकी सेवा के द्वारा आपने मुझे खरीद लिया है एक प्रकार से, तो सदैव मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा, भगवान ने कहा, या तुम मेरे साथ निवास करोगे, और आपका ये जो नाम है श्वेत, ये मैं अपने नाम के आगे लगाऊंगा। जैसे हम भगवान को पुकारते तो, कृष्ण को पुकारते तो कैसे, राधा कृष्ण, या फिर राम को सीता राम, है ना, हमेशा उनके जो भक्त हैं, राधा रानी है या सीता है, उनके भक्तों का नाम पहले है। तो वैसे ही भगवान जगन्नाथ ने कहा कि हे राजा तुम्हारा नाम पहले होगा और मेरे साथ ही तुम पूजा स्वीकार करोगे। तो भगवान का यहाँ विग्रह है, उस ट्री के पीछे छोटा सा मंदिर है जिनको कहते हैं श्वेत माधव। क्या कहते हैं?
श्वेत माधव।
श्वेत माधव के
जय।
तो श्वेत माधव ये विग्रह है जहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में है और राजा श्वेत भी उनके साथ है। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्त से इतना अधिक प्रेम रखते हैं, वो सारे संसार को दिखाने के लिए अपने नाम के आगे अपने जो प्रिय भक्त है राजा श्वेत उनका नाम भगवान यूज करते या लगाते हैं। तो शास्त्र कहते कोई व्यक्ति जब जगन्नाथ टेम्पल में जाता है तो हम प्रसाद पाते हैं वहाँ आनंद बाजार में, और वह प्रसाद गिरा रहता है ना, तो प्रसाद के ऊपर पाव पड़ना एक महान अपराध है क्योंकि वो साक्षात भगवान ने ग्रहण किया हुआ है। अनादर मतलब पाव लगना एक बहुत बड़ा अनादर का लक्षण है। तो शास्त्र कहते हैं कि प्रसादम के ऊपर हमारा पाव पड़ता है, उस अपराध से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए। यहाँ आकर किसका दर्शन करना चाहिए? श्वेत माधव का दर्शन करना चाहिए। और श्वेत माधव का कोई दर्शन करता है तो निश्चित रूप से इस अपराध से मुक्त होता है। तो ये जो श्वेत गंगा है ये पांच प्रमुख जलाशय हैं यहाँ कहाँ जगन्नाथपुरी में, उनमें से प्रमुख है। शास्त्र कहते हैं कोई व्यक्ति इन पांचों में से किसी एक में स्नान करता है तो उसका आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जाना निश्चित है। कौन वैकुंठ जाना चाहता है? मतलब आध्यात्मिक जगत हम सब जाना चाहते हैं। तो पांच स्थान है, एक है ये श्वेत गंगा जिसमें स्नान करना चाहिए, दूसरा है मार्कंडेय सरोवर उसमें स्नान करना चाहिए, तीसरा है इंद्रद्युम्न सरोवर उसमें व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, चौथा है रोहिणी कुंड कपाल मोचन जो एक शिव जी का टेम्पल है वहाँ, तो रोहिणी कुंड में स्नान करना चाहिए, और पांचवा है सी बात समंदर में स्नान करना चाहिए। बाकी चीजों के लिए तो हंस नहीं रहे थे सब लोग, कब हंसने लगे? समंदर में स्नान है ना। नॉर्थ इंडियंस तो वैसे पहाड़ देखते रहते, उनको समंदर दिखाई नहीं देता, वहाँ समंदर तो यहाँ है। तो ये क्योंकि ये जो समंदर है ये कोई सर्व सामान्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं समंदर जो है उनके कुछ प्रमुख स्थान शास्त्रों में निर्धारित किए गए हैं कि उस स्पॉट्स में जाके स्नान करना चाहिए, तभी आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल सकता है। चैतन्य महाप्रभु जब आए और उन्होंने हरिदास ठाकुर के देह को स्नान कराया तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो स्थान है अभी ये महातीर्थ हैल, ये जो स्थान अभी क्या बन चुका है? महातीर्थ हो गया है, और जो भी यहाँ स्नान करेगा वो वास्तव में जगन्नाथ के प्रति अपना जो प्रीति है वो अर्जन कर सकता है। तो इस प्रकार से इन स्थानों को पंच मुक्ति स्थान कहते हैं, और प्रयास करना चाहिए कि इनमें से कुछ स्थानों में हम स्नान करें।